नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है आयु कपिल। बच्चों, हम पढ़ रहे थे आपकी सामाजिक विज्ञान की बुक में चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम था विश्व की प्राचीन सभ्यताएं। इस चैप्टर में हम पढ़ चुके थे विश्व की और अपने भारत की काफी सारी प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। हमने जाना उन सभ्यताओं की विशेषता के बारे में, किस समय वो सभ्यताएं थी, उस सभ्यता के जो लोग थे उनका रहन सहन किस प्रकार का था, कैसा उनका जीवन था। हम डिस्कस कर रहे थे एंड में राजस्थान की एक सभ्यता जो थी बालाथल की सभ्यता, उसकी विशेषताएं हम डिस्कस कर रहे थे बच्चों। और उसमें हम दो विशेषताएं डिस्कस कर चुके थे। पेज नंबर 11 पर ताम्र उपकरणों के बारे में पढ़ा था हमने और मिट्टी के बर्तन के बारे में पढ़ा था। अब हम बालाथल की तीसरी विशेषता का डिस्कशन करेंगे जो कि है निर्माण कार्य। तो शुरुआत करते हैं। बालाथल के टीले के मध्य में एक विशाल दुर्ग स्वरूप संरचना खोजी गई जिसकी दीवारें 3.15 मीटर ऊंची तथा लगभग 5 मीटर मोटी हैं। यह दुर्ग 5600 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला था। यह दुर्ग मिट्टी तथा पत्थरों से बनाया गया। बालाथल की खुदाई में 11 कमरों के बड़े भवन की रचना भी प्राप्त होती है जो ताम्र पाषाण काल की द्वितीय अवस्था में निर्मित हुए थे। जिस प्रकार आहड़ की ताम्र पाषाण काल की सभ्यता में तांबा गलाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं, उसी प्रकार बालाथल में लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। आहड़ सभ्यता के लोग दक्षिणी राजस्थान के पहले किसान, पशुपालक, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले तथा धातु के औजारों के निर्माता थे। तो जो तीसरी विशेषता है बच्चों, वो ये कि यहाँ के जो लोग थे इस सभ्यता के, वो निर्माण कार्यों से जुड़े थे। हम बालाथल के टीले के मध्य में देखें तो हमें एक विशाल दुर्ग स्वरूप संरचना मिलती है जिसकी दीवारें 3.15 मीटर ऊंची हैं और वो लगभग 5 मीटर मोटी दीवार है। यह दुर्ग 5600 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला था और ये जो दुर्ग था ये मिट्टी और पत्थरों से बनाया गया था। बालाथल की खुदाई में 11 कमरों तक के बड़े भवन भी मिलते हैं। हमें पता चलता है कि उस वक्त इतने बड़े बड़े भवन बनाए जाते थे जिसमें 11 कमरे ताम्रपाषाण काल की द्वितीय अवस्था में निर्मित हुए थे ये भवन। ठीक है, जब ताम्रपाषाण युग चल रहा था, जो काल चल रहा था, उसके जो द्वितीय अवस्था थी उसमें इन भवनों का निर्माण किया गया था, ये पता चलता है खुदाई से। इस प्रकार आहड़ की ताम्रपाषाण काल की सभ्यता में तांबा गलाने की भट्टियों के अवशेष भी मिले हैं और लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष भी मिले हैं बालाथल में। जैसे आहड़ में हमें तांबा गलाने की भट्टियों के अवशेष मिले थे, ठीक वैसे ही यहाँ बालाथल में हमें लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष मिलते हैं। आहड़ सभ्यता के लोग दक्षिणी राजस्थान के पहले किसान, पशुपालक, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले थे या फिर धातु के औजारों के निर्माता। नेक्स्ट विशेषता जो बालाथल की है वो है चंद्रावती। तो इसको पढ़ते हैं। सिरोही जिले में माउंट आबू की तलहटी में आबू रोड के निकट चंद्रावती के नाम से एक प्राचीन शहर के अवशेष हैं। यह प्राचीन शहर सेवाणी नदी के दाएं तट पर बसा हुआ था तथा लगभग 50 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ था। इसकी खोज सन 1822 में कर्नल जेम्स टॉड द्वारा की गई। सन 1980 में महाराजा सियाजी राव गायकवाड़ विश्वविद्यालय बड़ौदा के पुरातत्व विभाग द्वारा इस प्राचीन शहर तथा संबद्ध क्षेत्र का गहन सर्वेक्षण किया गया। तो ये कह रहे हैं कि चंद्रावती नाम की एक जगह खोजी गई और सिरोही जिले में माउंट आबू की तलहटी में आबू रोड के निकट चंद्रावती नाम का ये पुराना शहर खोजा गया है, इसके अवशेष मिले हैं। ये शहर सेवाणी नदी के दाएं तट पर बसा हुआ था और ये लगभग 50 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। इसकी खोज 1822 में की थी कर्नल जेम्स टॉड ने और सन 1980 में महाराजा सियाजीराव गायकवाड़ विश्वविद्यालय बड़ौदा के एक पुरातत्व विभाग के जो लोग थे उन्होंने इसका, इस प्राचीन शहर का और संबद्ध क्षेत्र का गहन सर्वेक्षण किया था। सन 2013 एवं 2014 में इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान स्टडीज साहित्य संस्थान जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय उदयपुर एवं राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर जीवन खरकवाल के नेतृत्व में चंद्रावती का पुरातात्विक उत्खनन किया गया। शहर के पश्चिमी भाग में एक विशाल किले के अवशेष हैं, जो लगभग 26 बीघा में फैला है। मध्य भाग में 33 मंदिर समूहों के अवशेष हैं, जो हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित हैं। अधिकांश मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित ऊंची जगती पर निर्मित हैं। यहां से बड़ी संख्या में प्राप्त मूर्तियां माउंट आबू संग्रहालय में सुरक्षित हैं। स्थापत्य के दृष्टिकोण से इन्हें 8वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य रखा जा सकता है। उत्खनन में शहर के पूर्वी भाग में दो किले खोजे गए हैं। इनमें से एक किला वर्गाकार है तथा 60x60 मीटर क्षेत्र में फैला है। इसमें आयताकार तथा गोल बुर्ज बनाकर सुरक्षा दीवार को मजबूती प्रदान की गई है। तो ये क्या कह रहे हैं कि 2014 और 2013 में इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान स्टडीज, जनार्दन राय राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय, उदयपुर एवं राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग जयपुर, इन सब ने संयुक्त रूप से डॉक्टर जीवन खरकवाल के नेतृत्व में चंद्रावती का पुरातात्विक उत्खनन किया और ये पाया गया कि पश्चिमी भाग में एक विशाल किले का अवशेष मौजूद है। ये किला लगभग 25 बीघा में फैला था और मध्य भाग में 33 मंदिर समूहों के अवशेष भी मिले हैं, जो कि हिंदू और जैन धर्म से संबंधित हैं। अधिकांश मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित ऊंची जगती पर निर्मित हैं और यहाँ से बड़ी संख्या में मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं, जिन्हें माउंट आबू संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। स्थापत्य के दृष्टिकोण से इन्हें 8वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में बनी है या इनका निर्माण हुआ है। और उत्खनन में शहर के पूर्वी भाग में दो किले भी खोजे गए, जिनमें से एक किला वर्गाकार है तथा 60x60 मीटर क्षेत्र में फैला है और इसमें आयताकार और गोल बुर्ज बनाकर सुरक्षा दीवार को मजबूती प्रदान की गई है। ये इन्होंने उस किले का वर्णन किया है। आगे लिखते हैं कि उत्खनन में 3 विशाल भवनों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। एक कमरे में बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के अनाजों के जले हुए बीज तथा अनाज पीसने की घट्टी का भाग भी खोजा गया। भवनों में घोड़े व मनुष्यों की मृत मूर्तियां, मिट्टी व लोहे की वस्तुएं प्राप्त हुई। सभी भवन व फर्श ईंटों के बने हुए थे। ये कह रहे हैं कि 3 विशाल भवनों के अवशेष भी मिले हैं खुदाई के वक्त। एक कमरे में बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के अनाजों के जले हुए बीज मिले हैं तथा अनाज पीसने की घट्टी का भाग भी खोजा गया है। भवनों में घोड़ों और मनुष्यों की मृण मूर्तियां, मिट्टी व लोहे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं और ये देखा गया है कि सारे भवन और फर्श जो बने होते थे वो ईंटों के बने होते थे। किले के प्रवेश द्वार पर संवत 1325 का एक अभिलेख भी मिला है। चंद्रावती के अभिलेख तथा ताम्र पत्र माउंट आबू संग्रहालय में सुरक्षित हैं। यह परमार शासकों की राजधानी थी, जिसमें यशोधवल तथा धारावर्ष जैसे प्रतापी राजा हुए हैं। परमारों के पश्चात इस स्थल पर 14वीं शताब्दी में देवड़ा राजपूतों का अधिकार हो गया तथा 15वीं शताब्दी में आक्रमणों के कारण यह नगर ध्वस्त हो गया। ये कह रहे हैं कि खुदाई में हमें एक अभिलेख भी मिलता है, जिस पर प्रवेश द्वार पर जो अभिलेख लगा था, जिस पर संवत 1325 लिखा है। चंद्रावती के अभिलेख और ताम्र पत्र माउंट आबू संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए हैं और परमार शासकों की राजधानी रहा है ये चंद्रावती, जिसमें यशोधवल और धारावर्ष जैसे प्रतापी राजा पैदा हुए हैं। परमारों के बाद इस स्थल पर 14वीं शताब्दी में देवड़ा राजपूतों का अधिकार हो गया था तथा 15वीं शताब्दी में इस पर आक्रमण होने लगे और ये नगर ध्वस्त हो गया इस कारण। आगे लिखते हैं कि चंद्रावती के उपर्युक्त अवशेषों के नीचे एक अन्य प्राचीन बस्ती के अवशेष भी हैं। यह उत्खनन से स्पष्ट हुआ है। उपलब्ध पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर यह बस्ती 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच की हो सकती है। जब और खुदाई की गई तो यह पाया गया कि इस चंद्रावती प्राचीन शहर से पहले यहाँ एक और बस्ती थी, उसके भी अवशेष मिले हैं चंद्रावती के अवशेषों के नीचे। और ये पाया गया कि जो ये बस्ती थी पुरानी, ये लगभग 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच यहाँ रही होगी। चंद्रावती के क्षेत्र से पाषाणकालीन उपकरण तथा शैल चित्र भी मिले हैं, अतः यह स्पष्ट है कि पाषाण काल से ही मानव समाज चंद्रावती में उपस्थित था। मध्य काल में यह व्यापार का भी महत्वपूर्ण केंद्र रहा था। चंद्रावती के क्षेत्र से पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं, शैल चित्र भी मिले हैं और ये स्पष्ट है कि पाषाण काल से ही यहाँ मानव समाज रहा है चंद्रावती में उपस्थित, और मध्य काल में ये व्यापार का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र भी था। ये सारी चीजें हमें उत्खनन में मिले अवशेषों के द्वारा, साक्ष्यों के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा पता चलती है। ठीक है, अब इस पूरे चैप्टर में जो हमने महत्वपूर्ण बिंदु पढ़े हैं उनको उन्होंने एक जगह लिखा है, इसको एक बार रीड आउट करते हैं तो हमें पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। सिंधु व उसकी सहायक नदियों तथा सरस्वती नदी क्षेत्र के मध्य विकसित सभ्यता सिंधु सरस्वती सभ्यता का विकास हुआ था। सिंधु सरस्वती सभ्यता के मुख्य स्थल हड़प्पा मोहनजोदड़ो तथा बहावलपुरा पाकिस्तान में स्थित हैं तथा कालीबंगा राखीगढ़ी ढोलावीरा रंगपुर लोथल भारत में है। सिंधु सरस्वती सभ्यता नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। वेद चार है, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। वैदिक काल का धार्मिक जीवन सरल व आडंबर रहित था। मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया के मंदिर धार्मिक स्थलों को जिगुरात कहा जाता है। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी घाटी से हुआ। मिस्र की सभ्यता में गिजे का पिरामिड प्राचीन वास्तुकला की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है। चीन की प्राचीन सभ्यता हवांगहो तथा चानजियांग नदियों की घाटी में विकसित हुई थी। चीन की दीवार प्राचीन वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। सुकरात प्लेटो व अरस्तु यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक हैं। आहड़ सभ्यता ताम्रवती नगरी अथवा धूलकोट के नाम से प्रसिद्ध थी। यह बेड़च आहड़ नदी किनारे बसी हुई थी। कालीबंगा से पूर्व हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। बालाथल सभ्यता उदयपुर जिले की वल्लभ नगर तहसील में स्थित है। चंद्रावती सभ्यता सिरोही जिले में माउंट आबू की तलहटी में आबू रोड के निकट स्थित है। ये सारे वही पॉइंट्स हैं जो हमने पूरे चैप्टर के अलग अलग टॉपिक्स में पढ़े हैं। नेक्स्ट अब है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आपको ऑप्शन इसमें चार दिए हुए हैं, एक ऑप्शन सही आंसर है, तो इसको देखते हैं। पहला प्रश्न इसका देखते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता का कौन सा पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान में है? पहला हड़प्पा, दूसरा रंगपुर, तीसरा कालीबंगा या चौथा ढोलावीरा। इसका आंसर आप चाहें तो सिंधु सरस्वती सभ्यता वाले पैराग्राफ में देख सकते हैं, वहां मिल जाएगा, वरना ये महत्वपूर्ण बिंदु का जो सेकंड पॉइंट है उसमें भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा, जिसमें साफ साफ लिखा है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो तथा बहावलपुरम पाकिस्तान में। तो इसका आंसर यानी है ऑप्शन अ हड़प्पा। हड़प्पा जो है वो अब पाकिस्तान में स्थित है। वैदिक सभ्यता का ज्ञान कराने वाले ग्रंथ कौन से हैं? तो ये बहुत इजी है, ये तो आप बिना ऑप्शन के भी बता सकते हैं कि वैदिक सभ्यता का ज्ञान हमें कौन कौन से ग्रंथ कराते हैं। तो इसमें ऑप्शन इन्होंने दिए हैं वेद, दूसरा है उपनिषद, तीसरा है आरण्यक और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसमें वेद, उपनिषद और आरण्यक तीनों ही हमें हमारे वैदिक सभ्यता का ज्ञान कराते हैं। तो ऑप्शन दो उपर्युक्त सभी होगा सही जवाब। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, मिस्र की सभ्यता कौन सी नदी की घाटी में स्थित है? तो मिस्र की सभ्यता में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, पहला ऑप्शन है नील, दूसरा है सिंधु, तीसरा है हवांगहो और चौथा है दजला व फरात। तो ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था जब हमने मिस्र की सभ्यता पढ़ी थी कि जो नील नदी है वो ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है मिस्र की सभ्यता में। लोग उसे भगवान की तरह पूजते थे, जैसे हमारे यहाँ गंगा नदी को पवित्र माना जाता है वैसे वहाँ नील नदी को पवित्र माना जाता था, क्योंकि वहाँ जीवन का जो सबसे बड़ा स्रोत थी वो नील नदी थी। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन अ नील नदी। नील नदी की घाटी पे ही मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। जो फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों वो है, विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ इलियड व ओडेसी के रचनाकार थे? ऑप्शन है हीरोडोटस, सेकंड ऑप्शन है थ्यूसिडिडीज, थर्ड है होमर और चौथा है पाइथागोरस। तो ये हमने पढ़ा था पेज नंबर 10 पर, जो यूनानी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं हम पढ़ रहे थे उसमें जो थर्ड पॉइंट था पेरिक्लीज युग है ना यूनानी सभ्यता का, तो वही पेज नंबर 10 पर जो पेरिक्लीज युग वाला पैराग्राफ है उसमें आपको मिल जाएगा ये आंसर। इसमें आपका लाइन रहेगी आप है होमर की विश्व प्रसिद्ध रचनाएं इलियट व ओडेसी इसी काल की थी, आई थिंक 7th लाइन है इस पैराग्राफ में। तो वहां से हमें साफ साफ पता चलता है कि विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ इलियट और ओडेसी के रचनाकार थे ऑप्शन स होमर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोते गए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये तो मतलब हमें याद है अच्छे से, हमने अभी पढ़ा था जब राजस्थान की सभ्यताएं हमने पढ़ी थी, उसमें जो पहली सभ्यता थी राजस्थान की बच्चों ये मुझे भी याद है, मैं फर्स्ट थी कौन सी कालीबंगा। तो आपको कालीबंगा के ही पैराग्राफ में ये लाइन लिखी मिलेगी कि यहाँ पे जो खेत के जुते हुए खेत के अवशेष पाए गए वो विश्व के सबसे प्राचीनतम है। तो ऑप्शन इन्होंने दिए हैं फिर भी चार के कालीबंगा है, आहड़ है, चंद्रावती है या मोहनजोदड़ो है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन अ कालीबंगा। कालीबंगा में जो हमें अवशेष मिले हैं जुते हुए खेतों के, वो संसार में सबसे प्राचीनतम है। जो सेकंड पैराग्राफ है बच्चों कालीबंगा का, पेज नंबर 10 पर, उसकी जो सेकंड लाइन है उसमें साफ साफ लिखा है कि कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं जो संसार में प्राचीनतम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धूलकोट अथवा ताम्रवती नगरी के नाम से कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है? ऑप्शन है बालाथल, फिर चंद्रावती, आहड़ या सिंधु। तो आप बताएं कि धूलकोट अथवा ताम्रवती नाम से कौन सी सभ्यता प्रचलित है। तो इसका आंसर हमने अभी पढ़ा था, जो पेज नंबर 12 पर हमने महत्वपूर्ण बिंदु पढ़े हैं उसमें जो 14th पॉइंट है बच्चों, उसमें लिखा है आहड़ सभ्यता ताम्रवती नगरी अथवा धूलकोट के नाम से प्रसिद्ध थी और ये बेड़च या आहड़ नदी के किनारे बसी थी। तो इसका आंसर हमें पता है क्या है, ऑप्शन स, आहड़ नदी। बालाथल, चंद्रावती, सिंधु नहीं बल्कि आहड़ नदी जो है वो सभ्यता प्रचलित थी धूलकोट अथवा ताम्रवती नगरी के नाम से। अब अति लघुतरात्मक प्रश्न जो है वो डिस्कस करते हैं, इसमें बहुत छोटे में आंसर करना है क्वेश्चंस का। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, सिंधु सरस्वती सभ्यता के दो प्रमुख केंद्रों का नाम लिखो। तो हमें पता है सिंधु सरस्वती सभ्यता के दो प्रमुख केंद्र थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये जो हमने सभ्यता के बारे में पढ़ा था सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में, पेज नंबर 2 जो है आपका, उसमें आपको जो सिंधु सरस्वती सभ्यता का उत्खनन है वहां पर आपको पता चल जाएगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को उन्होंने दो प्रमुख केंद्र बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है। तो महत्वपूर्ण बिंदु का जो 4th पॉइंट है उससे आपको आंसर मिल जाएगा, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। फिर 3rd क्वेश्चन है, आश्रम कौन कौन से हैं नाम बताइए। तो आश्रम बच्चों, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा वैदिक सभ्यता से। आपको याद हो हमने वैदिक सभ्यता में 4 तरह के आश्रम पढ़े थे, है ना। तो हम वही उन्हीं के चारों के नाम बताने हैं। पेज नंबर 5 पर आप आएंगे तो उसमें जो एक हेडिंग है आश्रम व संस्कार व्यवस्था, वैदिक सभ्यता की विशेषता थी ये, 3rd ऑप्शन था आश्रम व संस्कार व्यवस्था 3rd हेडिंग। और इसी में 4 आश्रमों के नाम हैं। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और एंड में संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम होते हैं मनुष्य जीवन के वैदिक सभ्यता के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ होता है। या तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता वाले पैराग्राफ में मिल जाएगा, वरना डायरेक्ट महत्वपूर्ण बिंदु से आप इसका आंसर दे सकते हैं। जो महत्वपूर्ण बिंदु का पेज नंबर 12 पर पॉइंट नंबर 8, मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। तो इसका यही अर्थ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपजाऊ अर्धचंद्र किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 6 पर, मेसोपोटामिया की सभ्यता वाले हेडिंग में जो फर्स्ट पैराग्राफ है, 3rd लाइन में या 4th लाइन में पूरी लाइन मिल जाएगी कि मेसोपोटामिया को इसकी अर्धचंद्र सी आकृति तथा खेती की दृष्टि से अत्यधिक उर्वर होने के कारण उपजाऊ अर्धचंद्र भी कहा गया है। यानी कि ये क्लियर हो गया कि मेसोपोटामिया को ही क्या कहा जाता है, उपजाऊ अर्धचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिरामिडों में रखे शवों को क्या कहा जाता है। तो ये हमने पिरामिड वाले पैराग्राफ में पढ़ा था जब हमने मिस्र की सभ्यता की विशेषताएं पढ़ी थी बच्चों, याद है आपको। पेज नंबर 8 पर जो पिरामिड वाला पैराग्राफ है, राइट साइड सबसे ऊपर ब्लू कलर में लिखा है पिरामिड, उसमें साफ साफ लास्ट लाइन लिखी है कि पिरामिडों में रखे शवों को ममी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि आर्य भारत के बाहर से आए थे। तो नहीं, भारत के बाहर से नहीं आए थे। ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने जो वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा था, है ना, उसमें हमने आर्यों के बारे में जाना था। पेज नंबर 4 पर आप देखें उसका जो पहला पैराग्राफ है उसमें ये लिखा है कि पहले कुछ विद्वान मानते थे कि वो बाहर से आए थे, लेकिन वर्तमान पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक साक्ष्यों से यह सिद्ध हो गया है कि आर्य मूलतः भारत के ही निवासी थे। तो इस पैराग्राफ में साफ साफ लिखा है उन्होंने कि वो भारत के ही मूल निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी स्थापत्य कला का विश्व प्रसिद्ध नमूना किसको कहा जाता है। तो चीनी स्थापत्य कला का विश्व प्रसिद्ध नमूना ये बताने के लिए हम आएंगे कहाँ, हम आएंगे जो चीन की दीवार वाला टॉपिक था। पेज नंबर 9 पर जो हम चीनी सभ्यता की विशेषताएं पढ़ रहे थे, उसमें फिफ्थ पॉइंट है चीन की दीवार। उसमें पहले ही लाइन लिखी है कि चीन की दीवार प्राचीन चीनी स्थापत्य कला का विश्व प्रसिद्ध नमूना है। तो आंसर होगा चीन की दीवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सभ्यता में सैनिक होना अपमानजनक माना जाता था? ये बहुत इंटरेस्टिंग हमने पॉइंट पढ़ा था बच्चों, आपको याद होना चाहिए, जिसमें हमने देखा था कि इस वाली सभ्यता के जो सैनिक होते थे, जिन लोगों को सेना में भर्ती किया जाता था, वो लोग होते थे जिन्हें जो वहाँ की समाज है वो नहीं चाहती, वो समाज द्वारा अवांछनीय होते हैं। उन लोगों को समाज कहता है कि तुम हमारे समाज में मत रहो, यहाँ से जाओ, है ना। और वो या तो निर्धन होते थे, या अपरिश्रमी होते थे, या अवांछनीय होते थे, वही लोग सेना में जाते थे। और इस वजह से जो सैनिक होते थे उनको अच्छा नहीं माना जाता था, और उन्हें एक सम्मानजनक नजरे से नहीं देखा जाता था। तो ये कौन सी सभ्यता में था? ये था बच्चों चीनी सभ्यता में। पेज नंबर 8 पर चीनी सभ्यता की विशेषताओं में जो पहला है सामाजिक जीवन, उसमें आपको साफ साफ दिख जाएगा कि वहाँ पे जो पहला पैराग्राफ है उसकी लाइन में लिखा है लास्ट लाइन में कि वहाँ सैनिक होना अपमानजनक समझा जाता था। तो इसमें इन्होंने सिर्फ सभ्यता का नाम पूछा है, तो आप कहेंगे चीनी सभ्यता में सैनिक होना अपमानजनक माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनान की सभ्यता के प्रमुख नगर राज्य कौन कौन से थे? तो यूनान की सभ्यता में बच्चों हमने पढ़ा था, आप आए पेज नंबर 9 पर। पेज नंबर 9 पर यूनान की सभ्यता वाले टॉपिक में जो सेकंड पैराग्राफ है, उसमें आप देखेंगे कि दो प्रमुख नगर राज्य थे, स्पार्टा और एथेंस, है ना। तो फिर आधे बाकी के जो बचे नगर राज्य थे वो या तो स्पार्टा के अनुयायी थे, अनुसरण करते थे स्पार्टा का, या एथेंस जैसे थे। तो जो दो प्रमुख नगर राज्य थे वो थे स्पार्टा और एथेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहड़ बेड़स नदी के किनारे कौन सी सभ्यता थी? ये हमने अभी अभी पढ़ा था पेज नंबर 12 पर, जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसके 14th पॉइंट में आपको दोबारा से वही आंसर मिल जाएगा कि आहड़ सभ्यता जो है वही बसी हुई थी आहड़ नदी के किनारे या बेड़च नदी के किनारे। तो आहड़ सभ्यता जो होगा वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है, गघघर नदी का प्राचीन नाम क्या था? इसका आंसर बच्चों आपको मिलेगा पेज नंबर 10 पर, जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में फर्स्ट जो कालीबंगा की सभ्यता है उसका आंसर मिलेगा उसकी सेकंड लाइन में, जिसमें लिखा है कि यह स्थल हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती गघघर के तट पर, यानी इसका मतलब है सरस्वती नदी को ही गघर कहा जाता है। तो गघघर का जो इन्होंने पूछा है पहला नाम क्या था, प्राचीन नाम क्या था, तो हम कहेंगे कि गघघर नदी का प्राचीन नाम सरस्वती नदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट आबू की तलहटी में कौन सी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो ये हमने महत्वपूर्ण बिंदु का जो लास्ट पॉइंट है 17th पॉइंट, उसमें पूरी लाइन पड़ी है कि चंद्रावती सभ्यता सिरोही जिले में माउंट आबू की तलहटी में आबू रोड के निकट स्थित है, यानी माउंट आबू की तलहटी में चंद्रावती सभ्यता के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालाथल सभ्यता कहाँ स्थित है? तो हमें बताना है कि जो बालाथल सभ्यता है वो कहाँ स्थित है। महत्वपूर्ण बिंदु का जो पॉइंट 16 है उसमें ये पूरा आंसर आपका इस क्वेश्चन का वही पॉइंट 16 है, बालाथल सभ्यता उदयपुर जिले की वल्लभ नगर तहसील में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन जो है वेरी शॉर्ट आंसर का, वो है कालीबंगा सभ्यता का संबंध किस सभ्यता से है? तो ये पूछ रहे हैं कि किस सभ्यता से कालीबंगा सभ्यता का संबंध है। तो ये आप ओरली भी बता सकते हैं अगर आपने ये चैप्टर बहुत ध्यान से समझा होगा कि कालीबंगा कौन सी सभ्यता का हिस्सा थी। तो ये पाया गया सिंधु सरस्वती सभ्यता के स्थलों में, है ना। तो जो कालीबंगा सभ्यता है उसका किस सभ्यता से संबंध है? उसका संबंध है सिंधु सरस्वती सभ्यता से। ठीक है बच्चों, तो ये हमने वेरी शॉर्ट आंसर डिस्कस किए हैं। अब आगे हम डिस्कस करते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न, इसमें आपको शॉर्ट आंसर देना है। वैदिक सभ्यता के सामाजिक जीवन का वर्णन कीजिए। तो वैदिक सभ्यता का जो विशेषता है उसमें पूरा एक टॉपिक है सामाजिक जीवन, तो उसका पूरा आप यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे उसको। पेज नंबर 5 पर सामाजिक जीवन आपको एक हेडिंग दिखेगा जिसमें वर्ण व्यवस्था, परिवार, आश्रम व संस्कार व्यवस्था, तो इन सबको बताया गया है। तो सामाजिक जीवन में आप यही पूरा का पूरा बताएंगे। हमने डिस्कस किया था वर्ण व्यवस्था, परिवार, आश्रम और संस्कार व्यवस्था, ये तीनों टॉपिक आप सामाजिक जीवन में कवर करेंगे, ठीक है। इसी को आप आंसर में लिखेंगे कि इस तरह से सामाजिक जीवन था वैदिक सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के नगरीय जीवन का वर्णन कीजिए। तो इन्होंने पूछा है जो सिंधु सभ्यता थी, जो पहली सभ्यता हमने पढ़ी थी इस चैप्टर में, उसके नगरीय जीवन का आपको वर्णन करना है। तो इसमें आप सिंधु सरस्वती सभ्यता की जो विशेषताएं हैं, पेज नंबर 2 पर उसका जो नगर नियोजन, फर्स्ट टॉपिक है नगर नियोजन, वो आप इसमें बताएंगे, उसको इसमें आप डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें आप बताएंगे कि नगर की आवास योजना किस प्रकार की थी, सड़क व्यवस्था किस प्रकार की थी, और सफाई के लिए, जल निकास प्रणाली के लिए, स्वच्छता के लिए ये लोग कितना सही प्रबंध रखते थे, और किस तरह हमें विशेष निर्मितियां भी मिलती हैं इनके नगर व्यवस्था में, कि इन्होंने बड़े बड़े भवन बनाए थे, भट्टियां थी अन्नागार के, इन स्नानागार के, है ना, इन सब के हमें अवशेष मिलते हैं। तो ये सब आप डिस्कस करेंगे। ऑप्शन जो अ ऑप्शन है नगर नियोजन, ये वाला पूरा हेडिंग, और जो उसके फर्दर पॉइंट्स हैं वो सब आप इसमें नगर व्यवस्था में बताएंगे, सिंधु सभ्यता की नगर व्यवस्था में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र की सभ्यता में नील नदी का क्या योगदान है। ये बहुत ईजी है, मिस्र की जो सभ्यता की हमने विशेषताएं पढ़ी थी, मोस्टली आप देखो जो आंसर आ रहे हैं वो उनकी विशेषताओं से ही मिल रहे हैं, क्योंकि उनकी जो विशेषताएं थी वही मेन चीजें पढ़ने के लिए, क्योंकि वही चीजें हमें बताती हैं कि वहां पर लोग किस तरह रहते थे, है ना, क्या क्या करते थे और कैसा उनका जीवन रहा। ओके, तो अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि जो नील नदी थी उसकी क्या इम्पोर्टेंस थी मिस्र के सभ्यता में। तो पेज नंबर 7 पर जो मिस्र की सभ्यता वाला पैराग्राफ है उसमें आप देखें, पूरी जो लाइंस है वही सब आएगा आंसर में, कि नील नदी की घाटी में इस सभ्यता का विकास हुआ, और गंगा नदी की भांति ही नील नदी पवित्र मानी जाती है अफ्रीका में, क्योंकि प्राचीन काल से ही ये सुख और समृद्धि का कारण रही है, ये बहुत प्राचीन नदी रही है। फिर आगे आप इसमें अपने आप बताएंगे कि इस नदी के कारण चारों तरफ हरियाली रहती है, पेड़ पौधे उगते हैं, हमें खाने के लिए सब मिलता है, चाहे वो जल में मछली हो या फिर पेड़ पौधों से फल और सब्जियां आदि हो, है ना, और वहीं पे फिर सारे पशु पक्षी और मनुष्य रहना चाहते हैं। तो एक तरह से जो वो नदी होती है वही जीवन का स्रोत होती है। तो यही इम्पोर्टेंस नील नदी की भी रही है अफ्रीका में, मिस्र की सभ्यता के लिए यही नील नदी का योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मेसोपोटामिया की सभ्यता का क्या देन है, कि इन्होंने क्या योगदान दिया ज्ञान और विज्ञान में मेसोपोटामिया की सभ्यता ने। तो आप आएंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता की जो विशेषताएं हैं पेज नंबर 7 पर उसमें आएंगे, और उसमें जो 5th पॉइंट है ज्ञान विज्ञान, उसमें जो हमने पूरा पढ़ा था इनके बारे में कि किस तरह इन्होंने सूर्यास्त, सूर्योदय, चंद्रोदय और चंद्रास्त आदि का पूरा हिसाब कर लिया था, दिन को 24 घंटों में बांट दिया था, है ना, रेखा गणित में 360 डिग्री में विभाजित कर दिया था वृत्त को, और 1 मिनट 60 सेकंड का होता है और 1 घंटा 60 मिनट का होता है, ये सब इन्होंने जो पता लगाया था, ये सारी जानकारी जो इन्होंने दुनिया को दी है ये इनका योगदान है, ये सब आप डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पार्टा का सैनिक शासन कैसा था, वर्णन कीजिए। तो हमने स्पार्टा और एथेंस दो प्रमुख नगर के बारे में जाना था, है ना, यूनान की सभ्यता में पेज नंबर 9 पर आपको मिल जाएगा कि यूनानी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसमें पहला टॉपिक है स्पार्टा का जीवन। तो उस स्पार्टा के जीवन में उन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया है कि जो सैनिक शासन था वो किस प्रकार का था, वही सारा आप डिस्क्राइब करके इस आंसर में लिख देंगे, क्योंकि एथेंस में तो सैनिक शासन नहीं था, वहां पर तो लोकतंत्र था, प्रजातंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी सभ्यता में पेराक्लीस का क्या योगदान है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने देखा था पेज नंबर 10 पर, पेराक्लीस युग, लेफ्ट साइड ब्लू हेडिंग में है, तो उसमें क्या योगदान था पेराक्लीस का। हमने देखा था कि पेराक्लीस जो थे वो जनतांत्रिक नेता थे, एथेंस के महान नेता हुए हैं ये, इन्होंने अपने सुधारों से एथेंस के प्रजातंत्र को व्यापक और सुदृढ़ किया, और इन्हीं के इस युग में या इन्हीं के शासन काल के दौरान हमारे ना सिर्फ इसको यूनान को बल्कि पूरे विश्व को ही बहुत महान लोग मिले हैं। स्वर्ण युग ये सिर्फ यूनान का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का है, पेराक्लीस का युग, क्योंकि इसमें हमें बड़े बड़े दार्शनिक मिले सुकरात जैसे, इसमें हमें पाइथागोरस और हिप्पोक्रेटस जैसे गणितज्ञ मिले, इसमें हमें होमर जैसे बड़े विश्व प्रसिद्ध रचनाकार मिले हैं। तो जो इस पूरे पैराग्राफ में सारी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट में एक नई चीज है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों का उल्लेख कीजिए। पहली हमने कालीबंगा की सभ्यता पढ़ी थी पेज नंबर 10 पर, तो उसमें आपको मिल जाएगा ये जो राइट साइड पर बच्चों पहला पैराग्राफ है, वहां से आप देखो कि मिट्टी के बर्तनों पर और मोहरों पर जो लिपि है वो सैंधव लिपि है जो अभी पढ़ी नहीं जा सकती। वहां से हमें पानी के निकास के लिए लकड़ी और ईंटों की नालियां बनी हुई मिली हैं, तांबे के बहुत सारे औजार मिले हैं, और जो नगर नियोजन था सिंधु घाटी का उसी के अनुरूप कालीबंगा का भी हमें नगर नियोजन मिलता है ना, और यहाँ पर समाधियां मिलती हैं हमें, जिससे हमें उस वक्त के जो लोग हैं उनकी धार्मिक भावनाओं का पता चलता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, और ईंटों की दीवार बनाते थे वो लोग, मिट्टी से उसे जोड़ते थे, नालियां बनाते थे, कूड़ा डालने की पूरी अच्छे से मिट्टी के बर्तन रखते थे, सफाई बहुत सही रखते थे। तो यही सारे जो पॉइंट्स हैं यही हमें बताते हैं, जो सारे अवशेष हैं उनका उल्लेख करते हैं और उनकी इम्पोर्टेंस बताते हैं जो हमें कालीबंगा से मिले हैं। अब निबंधात्मक जो क्वेश्चंस हैं वो 5 हैं, तो उसमें आपको बड़े लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करके आंसर देना है। पहला है, सिंधु सरस्वती सभ्यता के सामाजिक व धार्मिक जीवन का उल्लेख कीजिए। तो इसमें वही जो हमने विशेषताएं पढ़ी थी सिंधु सरस्वती सभ्यता की, उसमें जो हमने सारे पॉइंट्स पढ़े हैं सामाजिक जीवन के, आप देखो पेज नंबर 2 पर आप आओ, तो उसमें जो हमने नगर नियोजन पढ़ा है उसके अंदर जो 3 पॉइंट्स हैं वो फिर वो भी आप बता सकते हैं, वरना सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन का इन्होंने बेसिकली पूछा है, तो बेसिकली आपको वही फिर डिस्क्राइब करना चाहिए। सामाजिक जीवन सेकंड पॉइंट है, वो आप पूरा बता देंगे, और इसके बाद जो धार्मिक जीवन है वो आपको मिलेगा पेज नंबर 4 पर, और धार्मिक जीवन इन दोनों पैराग्राफ से आप डिस्क्राइब कर देंगे चीजें सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो मेसोपोटामिया की भी सभ्यता की जितनी विशेषताएं हमने पढ़ी हैं, या तो आप सबको ही बता सकते हैं, है ना, पेज नंबर 7 पर आपको मिल जाएंगी। देखिए कुल 7 विशेषताएं हैं, और प्रमुख में हम ऐसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते क्योंकि हर विशेषता अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो आप हम्मुराबी की विधि संहिता बता सकते हैं, सामाजिक जीवन बता सकते हैं, आर्थिक जीवन तो बहुत इजी रहता है लगभग हर सभ्यता का, थोड़ा थोड़ा पॉइंट सेम ही रहता है, धार्मिक मान्यताएं, ज्ञान विज्ञान, स्थापत्य कला और कलाशैली सारे पॉइंट्स विशेष हैं इस सभ्यता के, तो कोई से भी पॉइंट्स आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। और क्योंकि ये निबंधात्मक प्रश्न है तो इसमें आप सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे तो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी सभ्यता पर निबंध लिखिए। तो चीनी सभ्यता, इसमें निबंध लिखने के लिए इन्होंने बोला है, तो एक तरह से इसका मतलब होता है कि डिस्क्राइब करो आपने क्या क्या पढ़ा है। और चीनी सभ्यता आप देखो पेज नंबर 8 पे थी और 9 पर खत्म भी हो गई थी, बहुत छोटी है चीनी सभ्यता। तो जो आपने पूरी चीनी सभ्यता पढ़ी और उसकी सारी विशेषताएं पढ़ी, उन सभी को आप इसमें डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, मिस्र की सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ये भी हमने पूरे मिस्र की सभ्यता के बारे में पढ़ा है, उसकी जितनी हमने विशेषताएं पढ़ी हैं उन सबको पॉइंट वाइज आप डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 8 पर 5 विशेषताएं हैं मिस्र सभ्यता की, वो आप डिस्क्राइब करेंगे इस आंसर में। लास्ट है, आहट सभ्यता का वर्णन कीजिए। तो हमने आहट सभ्यता पढ़ी है पेज नंबर 10 पर, पूरा 3 पैराग्राफ में है ये आहट सभ्यता। तो आप इस तीनों पैराग्राफ से जो जो आपको सारे पॉइंट्स एक अच्छे से फॉर्म करके पॉइंट वाइज आप अपना पूरा आंसर फ्रेम करेंगे और सारे पॉइंट्स को डिस्क्राइब करेंगे। हमने पूरा डिस्कस किया है, एक्सप्लेन में दोबारा नहीं करूंगी सारे पॉइंट्स, क्योंकि हमने चैप्टर पढ़ते हुए हर पॉइंट को पढ़ा है, उसका मतलब समझा है, एक्सप्लेनेशन दिया है वहाँ। तो आप इसको रीड आउट करके दोबारा से उन्हें आंसर फ्रेम करने का ट्राई करेंगे। सारा चैप्टर एक बार खुद से रीड आउट करेंगे, मैं हमेशा बोलती हूँ, तो बहुत सही रहेगा, क्योंकि जब तक आप एक बार अकेले बैठकर पूरा चैप्टर खुद से नहीं पढ़ते तो आपको कभी भी दिमाग में नहीं बैठेगी वो चीज। तो हम जब आपको बताते हैं कोई चीज, उससे आपको चीजें समझ आ जाती हैं, तो अगली बार जब आप खुद से उन्हें पढ़ते हैं तो आपको वो चीजें आसानी से समझ आती जाएंगी, क्योंकि आपको उनका एक ईजी वर्जन पता चल जाता है। ठीक है, तो फिर इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप अपने आप दे पाएंगे। तो एज ऑलवेज कीप रीडिंग, पढ़ते रहिए। एक चीज को जब आप 5 बार पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सेट हो जाती है हमेशा के लिए, फिर आप नींद में भी उसका आंसर दे पाते हैं। ठीक है, तो ट्राई कीजिए ये, और ऑल द बेस्ट। बाय बच्चों।